मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 6 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं आदर्श का, जो मोतिहारी बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 मार्च से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज चूंकि शुक्रवार है तो शुक्रवार को मैं कुछ आप सबको सूचनाएं देता हूं। और सूचनाएं कुल मिलाकर ये कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के हिंदी और इंग्लिश में आप सबको कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप मेन एग्जामिनेशन का की आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकें। इसके लिए वीकली क्वेश्चन भी एक दिया जाता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। ये कुछ सूचनाएं थी। मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे जनसांख्यिकी एवं वृद्ध इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में भी आपने सुना होगा और अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि जो रिजर्व बैंक हर 2 महीने में अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करती है उसके तहत उसने अपना रेपो दर, रिवर्स रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसे ज्यों का त्यों रखा है। ये हर 2 महीने में होता है और जो ये अपनी इस तरह की जो घोषणा करती है, जो मौद्रिक नीति की एक समिति बनी हुई है, तो यानी कि सामूहिक रूप से इसका निर्णय लिए जाते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा मित्रों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। आप कह लीजिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपकी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर फिर आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात इस पर नहीं करने जा रहा हूं, और इसलिए कि ये देखिए हर 2 महीने में नीति की घोषणा होती है और इसके बारे में मैं इससे पहले काफी बातें कर चुका हूं। और मेरे साथ धर्म संकट ये है कि कुछ नए स्टूडेंट लगातार जुड़ते चले जाते हैं जो उम्मीद करेंगे कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि सर हर 2 महीने के बाद इसी विषय पर बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूं, अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि इस पर आपकी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए कि यह है क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा न्यूज से हट करके एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा। देखिए, अभी मैड्रिड में जलवायु सम्मेलन चल रहा है और ये अभी लंबा चलेगा, मतलब 3-4 दिन अभी और ये सम्मेलन, 5 दिन लगभग सम्मेलन और चलेगा। इस बीच में आप देख रहे होंगे कि अखबारों में जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। सतर्कता के बतौर मैं पहले भी आप लोगों से ये कह चुका हूं, लेकिन मैं यहां स्पेशली याद दिला रहा हूं कि आप इस तरह के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ने को मिल रहा है, फिलहाल आप सब अपने अपने लेवल पर उसका कलेक्शन करते चले जाएं। अभी ये मत सोचें कि आपके काम की है आपके काम की नहीं है, उसका कलेक्शन करते चले जाएं। आप पाएंगे कि जब सम्मेलन खत्म होगा और सम्मेलन खत्म होने के 1 सप्ताह बाद तक भी इस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, उनको भी अपने कलेक्शन में ले लें, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है ये आप मान करके चलिए कि जो आपके एनवायरमेंट का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट ही है अपने आप में बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, उसका सबसे बड़ा हिस्सा कवर करेगा। आप जब मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे या आप सिलेबस को ही उठा करके देख लीजिए, यहां तक कि प्रीवियस जो पेपर उठाएंगे तो आप प्री के जो पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन सब का एक अच्छा कलेक्शन तैयार कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ बड़े लेटेस्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। और मेन एग्जामिनेशन में तो आप कह लीजिए जब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्ड पेपर में, तो उसमें 2 जो क्वेश्चन होते हैं वो एनवायरमेंट पर होते हैं, और ठीक इसी तरह से प्री एग्जामिनेशन में जो 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होते हैं तो उसमें से लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के तक केवल एनवायरमेंट से पूछे गए हैं। तो इसका वेटेज आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी खबर और थी जो अखबारों में छपी थी, और वो कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग, जिस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं इससे पहले, जिसका अब कार्यकाल एक साल के लिए 11 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, उसने अभी एक अंतरिम रिपोर्ट अपनी सौंप दी है राष्ट्रपति जी को। अंतरिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तो चूंकि अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तब वो उस समय देंगे। तो अखबार में एक खबर आई है और वो ये है कि जो रिपोर्ट सौंपी है 15वें वित्त आयोग ने, तो आपको मालूम है कि केंद्र सरकार बहुत से टैक्सेस कलेक्ट करती है और उसमें से राज्यों को हिस्सा देती है। तो पहले राज्यों का हिस्सा बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इससे पहले का जो वित्त आयोग था उसने 42% राज्यों का निर्धारित किया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका 42% वो राज्यों को देगी। तो जो सरकार थी उसने इस रिकमेंडेशन को स्वीकार भी कर लिया, तो इससे राज्यों को काफी पैसा मिलने लगा। तो ये अखबार में छपा है कि 15वें वित्त आयोग ने भी इसे ज्यों का त्यों रखा है, न तो 42% को घटाया है और न ही 42% को बढ़ाया है। ये जानकारी आपके होनी चाहिए, क्योंकि जब 14th पे कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी थी उससे एक साल बाद ये क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि राज्यों के लिए कितने प्रतिशत टैक्स में भागीदारी स्वीकार की गई है। तो चूंकि 15वें आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इसने क्या कहा है, क्या किया है, राइट। तो ये ज्यों का त्यों 42% रखा गया है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है जनसांख्यिकी एवं वृद्ध। इनफैक्ट सच पूछे तो जो मेरा मुख्य विषय है वह वृद्ध के ऊपर है। मैं वृद्ध के ऊपर आज आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, और ऐसा क्यों, इसके दो कारण है। पहला कारण तो दोस्तों, दो दिनों से आप अखबार पढ़ रहे होंगे, कल मैंने इस उस विधेयक की चर्चा नहीं की थी। आपको मालूम होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक दूसरे विधेयक को भी अपनी मंजूरी दी है, जो अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और उसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम 2019। अब ये संसद में जल्दी आएगा। इसका जो संबंध है, देखिए नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि माता पिता और वृद्ध, इनके कल्याण के लिए ये संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है। कल्याण की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तब उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए उनके बच्चों का, वह नहीं हो पा रहा है। बच्चे अब संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं, वृद्ध अकेले रहने को बाध्य हो जाते हैं। उसके अपने रीजन हैं और उन रीजन्स को हम लोग अभी देखने समझने की कोशिश करेंगे थोड़े से, जो महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं। एक तो पहला, यानी कि बकायदे कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। जो दूसरा कारण है वो ये है कि वृद्ध को लेकर के बकायदे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको 2013 का एक प्रश्न है पढ़कर सुनाता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे आपको ये पता लग जाता है, इनफैक्ट प्रश्न को सुनने के बाद, कि प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, भारत में वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर का है। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, ये प्रश्न पूछा गया है। चूंकि इस साल अधिनियम बनने वाला है, यानी कि ये पार्लियामेंट में आएगा, इस पर बहस होगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये जो वृद्ध का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इस जो अधिनियम है, अभी तो केवल ड्राफ्ट है, फिर संसद में इस पर बहस होगी, इसमें परिवर्तन भी होंगे, इसका मतलब केंद्रीय भाव क्या है? देखिए, केंद्रीय भाव कुल मिलाकर के ये है कि जैसे माता पिता अब कमाने की स्थिति में नहीं है, सारा कमाने की जो जिम्मेदारी है या जो कंट्रोल है वो आप कह लीजिए कि उनके बच्चों पर है, तो अब जो बच्चे हैं वो माता पिता को असहाय नहीं छोड़ सकते, उन्हें बकायदे उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जिम्मेदारी निभाने में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है खर्चा देने का, कि उन्हें खर्चा देना होगा, ऐसा नहीं कि आप उन्हें आप अलग कर देंगे। और जो भरण पोषण जो आप उनका भत्ता निर्धारित भी करेंगे उसमें यह नहीं कि आप अपनी तरफ से कर दीजिए, उसमें दो सबसे बड़े बिंदु होंगे। पहला तो यह कि जो बेटे और बहू हैं उनकी कमाई क्या है, यानी कि उनका अपना आर्थिक स्तर क्या है। दूसरा ये कि जो आपके माता पिता हैं उनका अपना आर्थिक स्तर क्या रहा है, इसके आधार पर उनका जो भरण पोषण का जो भत्ता होगा वह निर्धारित होगा। और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए बकायदे सजा का प्रावधान है, नंबर एक। नंबर दो, अब पुत्री का पक्ष देखिए। यहां तक कि जो बेटी है, बेटी और दामाद की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे, अब बेटी के तो माता पिता हो गए और दामाद के ससुर सास ससुर हो गए, कि वे भी इस तरह के दायित्व का निर्वाह करेंगे। इसके पीछे एक बहुत अच्छा और जबरदस्त तर्क है। आपने शायद पढ़ा होगा कि 2005 में एक संशोधन किया गया था, हिंदू उत्तराधिकारी कानून, सबसे पहले तो 1956 में बना था और 2005 में संशोधन किया गया। तो जो 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकारी कानून बना था, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम भी होना चाहिए, उसमें पिता की संपत्ति में बेटी की कोई भागीदारी नहीं थी। मतलब बेटी अपने पिता की संपत्ति में भागीदार नहीं थी, उसको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, उसकी शादी हो गई तो अपने ससुराल जाए। 2005 में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि नहीं, बेटी भी बेटों के जैसे ही पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी रखती है, यानी कि बेटी को भी भागीदारी मिलेगी। तो अब आप देखिए कि अगर बेटी अपने पिता की संपत्ति में भागीदार है तो दामाद भी है अपने ससुर की संपत्ति में भागीदार। तो जब संपत्ति में भागीदार है तो स्वाभाविक है कि अगर उनके ऊपर ये दायित्व तो आता है कि वो उनका भरण पोषण करें तो वो इससे कैसे बच सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो संपत्ति में तो भागीदार हों लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आए तब वो उससे अपने आप को विथड्रॉ कर लें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। और देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे समाज में जब परिवर्तन आने लगते हैं तो परिवर्तन अपने आप में एक तरह का प्रेशर होता है, एक तरह का दबाव होता है, या यूं कह लीजिए कि एक तरह की आवश्यकता होती है कि भाई अब आप इस तरह के कानून लेकर आइए। इससे पहले समाज में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी अभिभावकों को लेकर के या वृद्धजनों को लेकर के, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है। जगह जगह आप देखिए आपको वृद्धाश्रम दिखाई देने लगेंगे, वृद्धों की स्थितियां खराब दिखाई देने लगेंगी, वो बिल्कुल एकाकी जीवन जी रहे हैं। इस तरह की स्थितियां जब दिखाई दे रही हैं तो स्वाभाविक है कि अब ये स्थितियां इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि उनके लिए व्यवस्था की जाए। तीन सबसे बड़े तत्व हैं जो खासकर वृद्ध जनों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या कह लीजिए कि इनकी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। पहला है एकल परिवार बढ़ रहे हैं। एकल परिवार का क्या मतलब है कि पति पत्नी और बच्चे, बस हमारे यहां जो ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बच्चे भी एक दो हो रहे हैं तो एकल परिवार अब वृद्धों के लिए उसमें जगह नहीं रह रही है। दूसरा ये है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही देखिए कि भारत की ऑलमोस्ट 65 ईयर्स के करीब पहुंच गई, हालांकि विकसित देशों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। अगर आप जापान वापान में चले जाएं तो वहां तो 85-90 साल है। तो अब हो क्या रहा है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ने का मतलब है कि आबादी में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। पहले यह था कि कम उम्र में ही चूंकि मृत्यु हो जाती थी बात खत्म हो गई, लेकिन अब वो लंबा जीवन पा रहे हैं। एक फिल्म आई थी 102 नॉट आउट, आप देखिए कि उसमें क्या बात कही गई है, बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। तो हमारी आबादी में जो हमारे डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है जनसांख्यिकी, उसमें अब वृद्धों का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो जब वृद्धों का प्रतिशत बढ़ रहा है तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। और तीसरा यह भी हो रहा है कि पहले रिश्तों में जो आर्द्रता होती थी, जो नमी होती थी, जो खिंचाव और आकर्षण होता था, वो अब नहीं रह गया। रिश्तों के प्रति बड़ी उदासीनता होने लगी है। पति पत्नी ही अपनी जिंदगी ठीक ठाक निभा लें एक साथ रहते हुए तो इसे ही बहुत बड़ी बात समझा जाता है। तो फिर आप सोचिए कि उसमें सास ससुर माता पिता और वृद्धों के लिए कहां जगह रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये आज के समय की बहुत बड़ी मांग हो गई थी कि वृद्धों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए, अभिभावकों के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे चूंकि यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इस विषय को आज के अपने मुख्य विषय के रूप में चुना है। मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में दो मित्रों के नाम हैं, नीतू सेजवाल और नेहा मित्तल, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही, इससे पहले कि मैं दो दिनों के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँ, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।